एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में झांक रहे हैं जो अपने समय के सबसे ईमानदार दिमागों में से एक थे, लेकिन शायद उतने जाने पहचाने नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। हेनरी सिजविक, विक्टोरियन इंग्लैंड के ये दार्शनिक, मतलब 1838 से 1900 तक का उनका समय रहा। उन्होंने नैतिकता, यानी ये जो सही गलत के सवाल होते ना, उस पर इतनी गहराई और इतनी सफाई से सोचा कि आज भी उनके काम को अनदेखा करना मुश्किल है।
बिल्कुल, सिजविक की खासियत यही थी मुझे लगता है। वे ना आसान जवाबों से संतुष्ट नहीं होते थे।
अच्छा,
वो एक ऐसा दौर था जब विज्ञान, खासकर डार्विन वगैरह, पुरानी मान्यताओं को हिला रहे थे।
हाँ बिल्कुल,
तो ऐसे में उन्होंने नैतिकता की एक ठोस, एक तर्कसंगत बुनियाद खोजने की कोशिश की, और इस खोज में उन्हें कुछ बेहद मुश्किल और शायद थोड़ी परेशान करने वाली सच्चाइयों का भी सामना करना पड़ा। आज हम उन्हीं सच्चाइयों और सिजविक की जो सोच है उसको समझने की कोशिश करेंगे।
तो चलिए पहले थोड़ा उस माहौल को समझते हैं जिसमें सिजविक सोच रहे थे। विक्टोरियन युग,
हाँ,
ये नाम सुनते ही दिमाग में वो चार्ल्स डिकेंस की कहानियां आती हैं, औद्योगिक क्रांति का धुआं, बड़ा साम्राज्य।
सही,
लेकिन ये गहरे बौद्धिक उथल पुथल का भी दौर था, है ना?
हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। देखिए, डार्विन का विकासवाद आ चुका था 1859 में। उसने तो इंसान की जगह पर ही सवाल खड़े कर दिए थे।
सही बात है,
पुरानी जो धार्मिक आस्थाएं थी वो कमजोर पड़ रही थी। बुद्धिजीवियों में एक तरह का आस्था का संकट चल रहा था, कह सकते हैं। और दर्शन की दुनिया में देखें तो जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावाद, यानी यूटिलिटेरियनिज्म, वो काफी प्रभावशाली था।
हाँ, वो सबसे ज्यादा लोगों की सबसे ज्यादा खुशी वाला सिद्धांत।
बिल्कुल वही। और दूसरी तरफ कांट जैसे जर्मन विचारक थे जो कर्तव्य पर, सार्वभौमिक नियमों पर जोर दे रहे थे।
अच्छा,
सिजविक इन सबके बीच खड़े थे और उनका सवाल बुनियादी था। ठीक है, ये सब बातें हैं, लेकिन हम जानते कैसे हैं कि क्या सही है? क्या हम इसे तर्क से साबित कर सकते हैं?
और लगता है इसी सवाल ने उन्हें अपनी जिंदगी के एक बहुत अहम मोड़ पर भी खड़ा किया था। मैंने सुना है उन्होंने कैम्ब्रिज की अपनी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दी थी, कुछ ऐसा हुआ था?
हाँ हाँ बिल्कुल, ये उनकी बौद्धिक ईमानदारी का शायद सबसे बड़ा सबूत है। 1869 की बात है ये।
अच्छा,
उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि वे चर्च ऑफ इंग्लैंड के जो 39 सिद्धांत थे ना,
हाँ,
उन पर वो हामी नहीं भर सकते थे। मतलब उन्हें उन पर पूरा यकीन नहीं था। और उस जमाने में कैम्ब्रिज जैसी जगह पर ये बहुत बड़ा कदम था।
हाँ बिल्कुल,
ये दिखाता है कि उनके लिए सच कितना ज्यादा मायने रखता था। खैर, बाद में जब नियम बदले तो वे वापस लौटे और नैतिक दर्शन के प्रोफेसर भी बने। लेकिन ये घटना उनकी शख्सियत को परिभाषित करती है एक तरह से।
ये ईमानदारी फिर उनके काम में भी दिखती होगी। उनकी सबसे मशहूर किताब है द मेथड्स ऑफ एथिक्स। द मेथड्स ऑफ एथिक्स 1874 में आई थी। कहते हैं नैतिकता पर लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से है ये।
हाँ निश्चित रूप से।
तो इसमें उन्होंने क्या किया असल में?
इसमें सिजविक ने जैसे एक जासूस की तरह काम किया। उन्होंने नैतिकता के अलग अलग तरीकों की छानबीन की। मतलब उन्होंने पूछा कि लोग असल में कैसे तय करते हैं कि क्या सही है या क्या गलत। तो मोटे तौर पर उन्होंने तीन मुख्य नजरिए देखे। पहला, जिसे कहते हैं स्वार्थपरक सुखवाद या ईगोइस्टिक हिडोनिज्म,
यानी सिर्फ अपना भला देखना।
हाँ बिल्कुल, सिर्फ अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सुख या भलाई चाहना। दूसरा, उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म,
जो मिल वाला था, सबके लिए भलाई।
सही, सबके लिए ज्यादा से ज्यादा भलाई या खुशी चाहना। और तीसरा, अंतर्ज्ञानवाद या इंट्यूशनिज्म।
ये क्या है?
ये वो मानना है कि हमें अंदर से ही, मतलब सीधे सीधे पता चल जाता है कि क्या सही है। जैसे हमें अंदर से पता है कि झूठ बोलना गलत है या वादा निभाना सही है।
ओके, तो ये तीन तरीके हो गए, स्वार्थ, सबका भला और अंदर की आवाज। तो उन्होंने इन तीनों का विश्लेषण किया, नतीजा क्या निकला? क्या उन्हें कोई एक सही तरीका मिला?
यहीं पर बात दिलचस्प और थोड़ी जटिल हो जाती है। सिजविक ने बहुत बारीकी से यह दिखाया कि हमारी जो रोजमर्रा की नैतिकता है ना, जैसे वादा निभाना, सच बोलना, चोरी ना करना,
हाँ,
उसको सबसे अच्छी तरह उपयोगितावाद समझा सकता है।
अच्छा, कैसे?
मतलब ये नियम इसलिए सही हैं क्योंकि आम तौर पर ज्यादातर मामलों में इनसे समाज में खुशी बढ़ती है।
ठीक है, ये बात समझ में आती है।
लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है सिजविक के लिए, उन्हें एक बुनियादी समस्या नजर आई।
क्या समस्या?
उन्होंने पाया कि हमारा जो व्यवहारिक तर्क है, प्रैक्टिकल रीजन, यानी वो सोच जो हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, वो हमें दो अलग अलग दिशाओं में खींचती है और दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तर्कसंगत लगती हैं।
दो दिशाएं कौन सी?
पहली बात, तर्कसंगत स्वार्थ, रैशनल ईगोइज्म। ये सोचना पूरी तरह लॉजिकल लगता है कि मुझे हमेशा वो करना चाहिए जो मेरे अपने भले के लिए सबसे अच्छा हो, है ना?
हाँ, लगता तो है।
और दूसरी बात, तर्कसंगत परोपकार, रैशनल बेनेवलेंस, या कह लें उपयोगितावाद। ये सोचना भी उतना ही लॉजिकल लगता है कि मुझे हमेशा वो करना चाहिए जो सबके भले के लिए सबसे अच्छा हो।
अच्छा, मतलब एक तरफ मेरा भला और दूसरी तरफ सबका भला, तो इसमें दिक्कत क्या है? अक्सर ऐसा नहीं होता कि जो मेरे लिए अच्छा है वो दूसरों के लिए भी ठीक हो?
अक्सर हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन क्या हमेशा होता है? यही सिजविक की वो जो बौद्धिक ईमानदारी थी वो सामने आती है। उन्होंने कहा कि सोचिए, क्या कोई ऐसा पक्का तर्क है, कोई लॉजिकल प्रूफ जो ये साबित कर सके कि हमेशा हर हाल में जो मेरे लिए सबसे अच्छा है वही सबके लिए भी सबसे अच्छा होगा, या इसका उल्टा?
और
मिला उन्हें ऐसा तर्क?
नहीं,
उन्हें ऐसा कोई शुद्ध दार्शनिक तर्क नहीं मिला, कोई मैथमेटिकल प्रूफ जैसा नहीं मिला।
तो फिर इसका मतलब क्या हुआ नैतिकता के लिए?
इसका मतलब ये हुआ कि तर्क के स्तर पर, लॉजिक के लेवल पर, मेरे भले और सबके भले के बीच एक खाई हो सकती है।
एक गैप।
सिजविक ने इसे व्यावहारिक तर्क का द्वैतवाद कहा, ड्यूलिज्म ऑफ प्रैक्टिकल रीजन।
और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो काफी परेशान करने वाली खोज थी।
हाँ, ये तो है। उन्हें लगा कि अगर हम सिर्फ तर्क पर टिके रहें तो नैतिकता की दुनिया में एक तरह की अराजकता है,
केओस,
जैसे ब्रह्मांड के नैतिक नियमों में ही कोई अंदरूनी मसूदा हो।
बाप रे, ये तो काफी गहरा और मुश्किल सवाल है। मतलब तर्क हमें ये नहीं बता सकता कि हमें आखिर में स्वार्थी होना चाहिए या परोपकारी, दोनों ही तर्कसंगत हैं।
सिजविक के अनुसार शुद्ध तर्क कोई एक निर्णायक जवाब नहीं देता। उन्हें लगा कि इस खाई को पाटने का एक ही तरीका बचता है, वो है आस्था।
आस्था मतलब भगवान?
हाँ, अगर हम ये मान लें कि कोई ईश्वर है या कोई दिव्य शक्ति है जो ये सुनिश्चित करती है कि अंत में दूसरों की भलाई करना हमारे अपने हित में ही होगा,
जैसे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा टाइप,
कुछ वैसा ही। लेकिन सिजविक तो दार्शनिक थे, वे सिर्फ आस्था के सहारे जवाब नहीं देना चाहते थे, वो तो तर्क की सीमा को स्वीकार कर रहे थे। वो दिखा रहे थे कि देखो, तर्क यहां तक जाता है और इसके आगे शायद आस्था का क्षेत्र शुरू होता है।
इसीलिए शायद उन्हें दार्शनिकों का दार्शनिक कहते हैं, क्योंकि आम पाठक के लिए ये बातें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं।
हाँ, बिल्कुल।
उन्होंने मिल की तरह कुछ आसान भावनात्मक पुल बनाने की कोशिश नहीं की कि अरे दूसरों की खुशी में ही तुम्हारी खुशी है, चिंता मत करो।
नहीं, बिल्कुल नहीं। मिलने जोड़ने की कोशिश की, सिजविक ने उस खाई को और साफ साफ उजागर कर दिया। यही उनकी खासियत थी, वो कठोर ईमानदारी। उन्होंने कांट की तरह ये भी नहीं कहा कि बस एक ही सार्वभौमिक नियम है, जैसे कांट का वो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, और वही सब तय कर देगा।
नहीं
नहीं, उन्होंने माना कि तर्क के कई सिद्धांत हो सकते हैं और वो आपस में टकरा भी सकते हैं। उनकी पूरी कोशिश यही थी कि नैतिकता पर बात करते वक्त उतनी ही सावधानी, उतनी ही साफ सोच, जिसे मेथोडोलॉजिकल रिगर कहते हैं,
हाँ,
वो बढ़ती जाए जितनी विज्ञान में बढ़ती जाती है।
इसी ईमानदारी से जुड़ा उनका एक और विचार है जिसके बारे में मैंने पढ़ा, गूढ़ नैतिकता, एसोटेरिक मोरालिटी। ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है।
हाँ, ये थोड़ा विवादास्पद विचार है उनका। इसका मतलब है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो लोग नैतिकता को गहराई से समझते हैं, मान लीजिए दार्शनिक, उनके लिए सही तरीका ये हो कि वे आम जनता को उपयोगितावाद के असली जटिल तर्क न बताएं?
क्यों भाई?
शायद इसलिए क्योंकि आम लोगों के लिए सरल नियम मानना, जैसे कभी झूठ मत बोलो, समाज के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। भले ही एक उपयोगितावादी दार्शनिक अंदर से जानता हो कि कभी कभी ज्यादा भलाई के लिए झूठ बोलना भी जरूरी हो सकता है।
ओ, मतलब ज्ञानियों के लिए अलग नियम और आम लोगों के लिए अलग, ये तो थोड़ा अजीब नहीं है? इस पर तो जरूर बहस हुई होगी।
हाँ हाँ, बिल्कुल। इसकी आलोचना हुई, कहा गया कि ये पारदर्शिता के खिलाफ है और एक तरह की इलीटिस सोच को बढ़ावा देता है, जैसे कुछ ज्ञानी लोग पर्दे के पीछे से फैसले ले रहे हों।
सही बात है।
लेकिन ये सिजविट की उसी मुश्किल को दिखाता है। अगर सच यानी उपयोगितावाद का सिद्धांत इतना जटिल है तो उसे समाज में कैसे लागू किया जाए? ये सवाल था उनके सामने।
उनकी दूसरी किताबों में भी क्या इसी तरह की सोच दिखती है जैसे उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पे भी लिखा था?
हाँ, उनमें भी उनकी वो व्यवहारिक बुद्धि और संतुलन दिखता है। जैसे द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में उन्होंने उस समय के जो अहस्तक्षेपवादी लेजेफेयर विचार थे ना,
हाँ, कि बाजार को खुला छोड़ दो।
बिल्कुल, उन्होंने उसे चुनौती दी। उन्होंने माना कि बाजार कई बार विफल होता है, मार्केट फेलियर होते हैं, और समाज की भलाई के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी हो सकता है।
अच्छा,
तो ये भी दिखाता है कि वे सिर्फ किताबी विचारक नहीं थे, बल्कि असली दुनिया की समस्याओं पर भी गंभीरता से सोच रहे थे।
अब अगर हम उनकी विरासत देखें, उनके प्रभाव को देखें, तो क्या कहेंगे? ठीक है, वो मेलिया कांच जितने मशहूर नहीं हुए आम लोगों में,
सही,
लेकिन अकादमिक दुनिया में उनका असर क्या रहा?
अकादमिक दर्शन में और खासकर नैतिकता के क्षेत्र में उनका असर बहुत गहरा और स्थायी है। जैसा आपने कहा, वे दार्शनिकों के दार्शनिक हैं। उनकी किताब द मेथड्स ऑफ एथिक्स को आज भी कई बड़े विचारक जैसे डेरिक पार्फिट हुए या पीटर सिंगर हैं,
हाँ, नाम सुने हैं,
वे इसे अंग्रेजी भाषा में नैतिक दर्शन पर लिखी गई अकेली सबसे बेहतरीन किताब मानते हैं।
वाह।
और उनकी जो विश्लेषणात्मक शैली थी, जिस तरह वो तर्क को परत दर परत खोलते थे, उसने 20वीं सदी के दर्शन की, खासकर एनालिटिकल फिलॉसफी की, नींव रखी।
और सबसे बढ़कर शायद उनका उठाया वो सवाल, मेरा भला बनाम सबका भला वाला द्वंद, वो तो आज भी उतना ही जिंदा है ना?
बिल्कुल, वो आज भी नैतिकता का एक केंद्रीय सवाल है, और सच पूछे तो उसका कोई आसान जवाब आज भी नहीं मिला है।
सही।
क्या हमें अपने निजी हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, या समाज या दुनिया के हित को? ये सवाल व्यक्तिगत फैसलों से लेकर, आप देखिए, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों तक,
हाँ बिल्कुल,
हर जगह उठता है। सिजविक ने इस मुश्किल को पूरी ईमानदारी से हमारे सामने रख दिया था। बस
उनके कुछ कथन भी उनकी सोच को अच्छी तरह दर्शाते हैं। एक आपने बताया था ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से वाला, वो क्या था पूरा?
हाँ, वो उपयोगितावाद के मूल भाव को पकड़ता है। वे कहते हैं, किसी भी एक व्यक्ति की भलाई, यदि मैं ऐसा कह सकूं, ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से किसी अन्य की भलाई से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ये निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी का जबरदस्त बयान है कि जब हम नैतिकता की बात करें तो हर किसी की भलाई बराबर मायने रखती है, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, कोई कम नहीं।
और एक और कथन उनकी सावधानी दिखाता है, वो अंतर्ज्ञान वाला।
हाँ, वो भी मेथड्स ऑफ एथिक्स से ही है। किसी निर्णय को सहज ज्ञान युक्त, इंट्यूटिव कहने का मतलब यह नहीं है कि वह अचूक है।
मतलब
सिर्फ इसलिए कि हमें कोई बात अंदर से सही लग रही है, वो हमारा गट फीलिंग है, जरूरी नहीं कि वो सचमुच सही हो। हमें उसे भी तर्क की कसौटी पर कसना होगा, उसकी जांच करनी होगी, अंधविश्वास नहीं करना है।
और अपनी भूमिका के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था।
हाँ, उन्होंने एक दोस्त को कत्र में लिखा था, बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि मैं कोई पैगंबर नहीं बल्कि नैतिकता का छात्र हूँ।
वाह, ये उनकी विनम्रता दिखाता है।
बिल्कुल, वे कोई नया धर्म या पंथ नहीं बना रहे थे, वे बस सच्चाई को, नैतिकता की सच्चाई को, एक छात्र के तरह समझने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन जाहिर है आलोचनाएं भी हुई होंगी, खासकर उस विक्टोरियन माहौल में उनके विचारों की।
हाँ जरूर, बिल्कुल हुई। कुछ लोगों को डर था कि भाई ये उपयोगितावाद तो पारंपरिक मूल्यों को, धर्म को खत्म कर देगा, समाज में अस्थिरता आ जाएगी। धार्मिक लोगों को लगा कि ईश्वर के बिना नैतिकता टिक ही नहीं सकती, नैतिक प्रेरणा खत्म हो जाएगी।
और आज के दार्शनिक?
आज भी बहस जारी है। कई आधुनिक दार्शनिकों ने उनके द्वैतवाद को चुनौती दी है। वे कहते हैं कि शायद ये तर्क की नहीं बल्कि सिजविक के सोचने के तरीके की, उनके फ्रेमवर्क की सीमा थी।
अच्छा,
और वो जो घूढ़ नैतिकता वाली बात थी, उसकी भी आलोचना होती है।
हाँ, वो तो होनी थी।
और हाँ, एक और बात जिस पर उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी, वो थी उनकी परामनोविज्ञान या साइकिकल रिसर्च में रुचि।
हाँ, भूत प्रेत की बातें, एक दार्शनिक और ये सब, इसे कैसे देखा गया?
देखिए, कई लोगों ने इसे उनका भटकाव माना। वे सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च के सह संस्थापक भी थे।
अच्छा।
हाँ, और वे मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं, टेलीपैथी वगैरह जैसे विषयों पर वैज्ञानिक सबूत ढूंढने की कोशिश करते थे।
लेकिन क्यों, एक नैतिक दार्शनिक को इसमें क्या रुचि?
ये दिलचस्प है। शायद वो उम्मीद कर रहे थे कि अगर आत्मा के अमर होने का कोई वैज्ञानिक सबूत मिल जाए,
हाँ,
तो वो मेरे भले बनाम सबके भले वाले द्वंद्व को सुलझा सकता है।
कैसे?
अगर मृत्यु के बाद जीवन है और हमारे कर्मों का फल मिलता है, तो शायद परोपकार करना, दूसरों की भलाई करना, लंबे समय में हमारे अपने स्वार्थ के लिए भी फायदेमंद साबित हो जाए।
ओह, ये तो गजब का कनेक्शन है।
हाँ, ये एक संभावना है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि वे इस खोज में भी बहुत शक्की और कठोर थे। वे सिर्फ कहानियों पर यकीन नहीं करते थे, वे वैज्ञानिक पद्धति चाहते थे।
कुछ और रोचक बातें भी हैं उनके बारे में। मैंने पढ़ा कि उन्हें बोलने में थोड़ी दिक्कत थी।
हाँ, ये सच है। वे जीवन भर हकलाहट, स्टैमरिंग से जूझते रहे।
ओह,
शायद इसी वजह से वे सार्वजनिक भाषणों से थोड़ा बचते थे। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि शायद इसी ने उनके लेखन को और भी ज्यादा सटीक, सधाउआ और स्पष्ट बना दिया। वे हर शब्द को बहुत तौल कर लिखते थे।
ये हो सकता है। और ये भी कि फेलोशिप से इस्तीफा देने के बाद भी वे कैम्ब्रिज में चर्च की प्रार्थना सभाओं में जाते रहे, ये थोड़ा अजीब नहीं?
ये उस दौर के बौद्धिक और भावनात्मक तनाव को दिखाता है। दिमाग शक कर रहा था, नैतिकता के लिए ईश्वर की जरूरत पर सवाल उठा रहा था, लेकिन दिल शायद परंपरा से, समुदाय से जुड़ा रहना चाहता था। वे पूरी तरह नास्तिक नहीं बने, बल्कि एक तरह के अज्ञानेवादी रहे। मतलब जो कहता है कि ईश्वर है या नहीं, ये हम जान नहीं सकते।
और एक और बहुत जरूरी बात, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किया।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैम्ब्रिज में जो न्यूनम कॉलेज है, महिलाओं के लिए शुरुआती कॉलेजों में से एक,
हाँ,
उसकी स्थापना में उनकी और उनकी पत्नी एलिनोर मिल्ड्रेड बालफोर की बहुत अहम भूमिका थी। एलिनोर खुद एक काबिल भौतिक विज्ञानी और बाद में उसी कॉलेज की प्रिंसिपल बनी। उनकी साझेदारी उस युग के हिसाब से काफी प्रगतिशील थे।
ये उनके विचारों के व्यावहारिक पहलू को भी दिखाता है।
हाँ, बिल्कुल।
तो अंत में अगर हम समेटें, हेनरी सिजविक हमें क्या सिखाते हैं, वे आज क्यों मायने रखते हैं?
मुझे लगता है सबसे पहले तो वो हमें बौद्धिक ईमानदारी का मतलब सिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि मुश्किल सवालों का सामना करना कितना जरूरी है, भले ही उनके जवाब हमें सुकून देने वाले ना हो। आसान रास्तों से बचना।
सही।
उनका द मेथड्स ऑफ एथिक्स आज भी नैतिकता पर गंभीरता से सोचने का एक बेहतरीन औजार है। उसकी स्पष्टता, उसकी गहराई बेजोड़ है।
और वो द्वंद्व।
हाँ, और सबसे बढ़कर वो हमें उस बुनियादी कश्मकश की याद दिलाते हैं जो शायद इंसानी फितरत का हिस्सा है, अपने भले और सबके भले के बीच का वो जो तनाव है, वो द्वंद्व।
और शायद यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ सकते हैं सोचने को, क्या सिजविक का वो ब्रह्मांड का नजरिया, मतलब बिना किसी भेदभाव के सबकी भलाई के बारे में सोचना, क्या वो हमें आज की बड़ी चुनौतियों, जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन है या वैश्विक गरीबी है,
हाँ,
उनसे निपटने में कोई मदद कर सकता है, जहां अक्सर एक देश का हित या एक समूह का हित पूरी दुनिया के हित से टकराता हुआ दिखता है?
बिल्कुल। या फिर क्या वो खाई स्वार्थ और परोपकार के बीच की, जिसे सिजविक ने पहचाना था, क्या वो आज भी उतनी ही गहरी है? क्या हम वाकई कभी तर्क के जरिए से पूरी तरह पाट सकते हैं?
सोचने वाली बात है।
ये वो सवाल हैं जो सिजविक को आज भी जिंदा रखते हैं और जरूरी बनाते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।